man kann.
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है और आज के इस नए अंक में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, विश्व में एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभरता भारत। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परीक्षित निर्भय जी जुड़ चुके हैं। परीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।
परीक्षित जी, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल या मेडिकल टूरिज्म है, इसके पूरी दुनिया में बढ़ने के ट्रेंड को देख सकते हैं कि पूरा जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का एक बाजार है, वो आंकड़ा कहता है कि 2022 में जो 115 अरब डॉलर था, वो 2030 तक संभावना है कि 270 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के तौर पर उभर रहा है लगातार। और एक आंकड़ा ये है कि 2025 में भारत का मेडिकल टूरिज्म का पूरा अनुमान है वो लगभग 8 अरब डॉलर के आसपास था, जो उम्मीद है कि 2030 तक 16 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच सकता है। तो आप कैसे देखते हैं भारत की तरक्की को और किस तरह से भारत एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभर रहा है?
जो आंकड़ों की बात है, आंकड़े तो बहुत स्पष्ट है, और जिस तरीके से हम अपना इतिहास देखेंगे और पिछला कुछ दौर देखेंगे, उसका कंपेयर करेंगे, तो ये हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये आंकड़ा हम तय समय में हासिल कर पाएंगे।
जी,
चिकित्सा पर्यटन की बात है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं।
बिल्कुल।
दरअसल भारत का जो चिकित्सा पर्यटन का जो इतिहास है, वो हम तीन भाग में देखते हैं। पहला भाग है साल जो 2000 है उससे पहले का, उसके बाद का जो इतिहास आता है वो 2000 से 2014 के बाद का आता है, और 2014 के बाद का एक अलग इतिहास रहा है हमारे देश का। चिकित्सा का इतिहास चूंकि हमारा सदियों पुराना है, आयुर्वेदा हो गया, योग हो गया, हम इसमें हमेशा से आगे रहे हैं। पूरी दुनिया को हमने ही सर्जरी के लिए कल्पना दी, सर्जरी का आचार्य सुश्रुत हमारे ही है। एक जब साल दर साल हम इसकी स्थिति देखते हैं तो 1960 से शुरू होता है, मुझे याद है ये बात साल 2000 के आसपास की है, 2001-2002 के आसपास, तब तक चिकित्सा पर्यटन अपनी एक गति से चल रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा ऐसी गति नहीं थी, चल रहा था, लोग आते थे, बहुत लिमिटेड आते थे। मुझे याद है 1990 के बाद भारत में सबसे जल्दी से अस्पताल बनना शुरू हुए, उससे पहले इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने इंडिया में नहीं थे, सबसे बड़ा दिल्ली में अपोलो बना था 99 के आसपास। उसके बाद ये चीजें बढ़ी तो 2002 के आसपास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने मिलकर, और भारतीय उस समय ये था भारतीय उद्योग परिसंघ, इन लोगों ने मिलकर उस समय एक मुद्दा उठाना, पॉलिसी वाइज गवर्नमेंट से अपील करना शुरू किया कि भाई चिकित्सा पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब किन्हीं कारणों के चलते सरकार ने उस पर संज्ञान तो लिया, पर वो जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं हुई। अब बात आती है 2014 की। धीरे धीरे जब वक्त 2014 का आया, गवर्नमेंट चेंज हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले सरकार बनते ही सबसे पहले क्या किया कि हेल्थ के साथ साथ आयुष को भी जोड़ा, एक आयुष मंत्रालय शुरू किया। आयुष मंत्रालय शुरू करते करते इनका एक दो साल बाद ही इन्होंने चिकित्सा पर्यटन पे काम करना स्टार्ट किया। चिकित्सा पर्यटन पे काम इस कदर इनका शुरू हुआ कि आज आप देखिए कि भारत जो है वर्तमान में टॉप 10 शीर्ष जो देश हैं चिकित्सा पर्यटन के, उनमें से एक है। इसी तरीके से आंकड़े जो आपने बताए, इसमें कुछ आंकड़े मैं भी अगर जोड़ू आप बताऊं, तो दूसरा आंकड़ा ये कहता है कि दुनिया के शीर्ष 20 वेलनेस जो पर्यटन बाजारों में भारत 12वें स्थान पर है। एशिया प्रांत क्षेत्र में बात करें तो टॉप 10 शीर्ष 10 स्वास्थ्य देखभाल स्थलों में से 5वें स्थान पर भारत है। भारत की आज स्थिति ये है कि तकरीबन 80 से ज्यादा देशों के मरीज हर साल आ रहे हैं और उपचार करा रहे हैं यहाँ पर। भारत के लगभग जितने भी शीर्ष प्राइवेट अस्पताल की जो चयन है, इन सबके लगभग सभी जगह पे इंटरनेशनल पेशेंट को लेकर रिलेशनशिप मैनेजर भी अपॉइंटेड है। हम दिल्ली में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहां पर ये लोग कई तरीके की फैसिलिटी हैं, इंश्योरेंस से लेके और सारी चीजें हैं। सरकार भी कई सारी सुविधाएं देती है, जैसे आपको पता हो हाल फिलहाल में कुछ ही समय पहले आयुष वीजा हुआ था, ई मेडिकल वीजा हो गया, जो इनका वीजा का प्रोसेस या बाकी जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है पेशेंट की, वो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल जो है वो भी काफी आसान किया है भारत सरकार ने। साथ के साथ में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें और उनका इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका स्वीकार्यता बने, उसके लिए भी सरकार ने गुणवत्ता और मानकीकरण पे काम किया।
बिल्कुल।
आज इसका जो परिणाम है वो ये कि अधिकांश हॉस्पिटल के पास में NABH यानी इसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, इनका प्रमाण पत्र हासिल है। ये प्रमाण ये बताता है कि ये अस्पताल ए ग्रेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था से लेकर उपचार तक सबसे बेहतर। ये व्यवस्था है।
परीक्षित जी, दो बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं मेडिकल टूरिज्म में, एक तो होता है डायग्नोस एडवांस सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और दूसरा है जैसा कि आपने बात की वेलनेस, जिसमें इन दोनों क्षेत्रों में भारत बड़ी तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो जिसमें जटिल से जटिल इलाज लेने की ओर लोग भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी बताया भारत लगातार आयुष को बढ़ावा दे रही है, जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसमें कि होम्योपैथी, यूनानी पद्धति, अलग अलग पद्धतियां शामिल हैं, तो हर स्तर पर मेडिकल और वेलनेस पर भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, तो कैसे आप देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में प्रगति से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो रहा है?
बिल्कुल हो रहा है, उसकी वजह ये भी है, देखिए स्वास्थ्य को या चिकित्सा को आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से नहीं देख सकते, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें चिकित्सा उपकरण भी आते हैं, इसमें इलाज भी आता है, इसमें जांच भी आती है, इसमें इलाज के भी कई सारी विधियां आती हैं, और बात यहाँ सिर्फ एलोपैथी या आयुर्वेदा की नहीं है, आप ये देखेंगे कि भारत सरकार ने होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, आयुष को मतलब इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत अप्रोच के साथ में जो पहल की है, आज हम किसी भी एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ एलोपैथी नहीं, हमको आयुष का भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, हमको हर तरीके की पैथी है एक ही छत के नीचे, चूज हमें करना है कि हमको किस पैथी में जाके अपना उपचार करना है, ये अप्रोच बहुत ही अच्छी अप्रोच है, और मुझे नहीं लगता, मैं इतनी कंट्री में मैंने देखा है कि इस तरीके की अप्रोच दूसरे देशों में है। दूसरी बात, सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी पॉलिसी चलाई थी चिकित्सा पर्यटन को लेकर, मुझे बहुत वो पसंद आई, उसका था हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, मतलब भारत से मरहम लीजिए और भारत में मरहम लीजिए, दोनों बातें, तो चिकित्सा पर्यटन के नाते आप भारत में आइए, यहाँ उपचार कराइए, अच्छा गुणवत्ता वाला उपचार लीजिए, और भारत से मरहम का मतलब भारत के जो स्टाफ है, भारत का जो डॉक्टर है, भारत के जो नर्से हैं, उनके देशों में अपॉइंट करने के लिए, तैनात करने के लिए उन देशों से वो करा, तो ये योजना जो है कि मतलब सिर्फ हम अपने घर में ही नहीं दे रहे हैं, हम आपके घर में आके भी आपको इलाज देने की व्यवस्था कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर, और भारत में जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ रहा है उसका एक और अहम कारण ये माना जाता है कि भारत में चिकित्सा को लेकर एक बहुत पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि आपने भी अस्पतालों, डॉक्टरों का जिक्र किया, तो आंकड़ा कहता है कि भारत में लगभग 70,000 के आसपास अच्छे अस्पताल हैं, जिसमें कि लगभग 43,000 के आसपास निजी अस्पताल और 25,000 से 26,000 के आसपास सरकारी अच्छे अस्पताल हैं, और डॉक्टरों की संख्या भी 12,00,000 से ऊपर है जो प्रशिक्षित और सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। इसके अलावा भारत में जो चिकित्सा शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है, उसका भी एक बहुत भरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कैसे भारत का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इकोसिस्टम है, वो भारत को एक दुनिया में बड़े मेडिकल हब के रूप में बनाता है, और आगे आने वाले समय में इसके और बढ़ने की संभावना है, जैसा कि सरकार भी मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान दे रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, तो कैसे आने वाले समय में इस इकोसिस्टम के और मजबूत होने से जो भारत का एक मेडिकल हब बनना है, मेडिकल टूरिज्म बनने की दिशा में एक कदम है, वो और आगे बढ़ेगा?
जी जी, देखिए अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो आजाद भारत का इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है, हमें आज आजाद हुए 70-75 साल हुए हैं, और हमने जो अप्रोच ली है ये पिछले 10-12 साल की अप्रोच है, और इस 10-12 साल की अप्रोच में हम देखिए कहाँ आके खड़े हो गए, टॉप 10 शीर्ष 10 देशों में हम शामिल हो गए। इसी अप्रोच के साथ अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो ये पूरा भरोसा है कि हम पहले या दूसरे स्थान पर होंगे, उसकी वजह हमारे पास में क्वालिटी है, हमारे पास में क्वांटिटी है यानी संख्या है डॉक्टरों की, हमारे पास में इंस्टीट्यूट है, देश में जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 750 के आसपास मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट और सरकारी, जो कि ये शायद दूसरा या तीसरा स्थान आता है पूरे दुनिया में भारत का, जो हम डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे ज्यादा MBBS सीटें हमारे पास में है, और आयुष और इसको लेके भी हमारे पास में सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो कहने का मतलब हम स्टाफ में भी ध्यान दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू वो पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं जिससे बाहर के मरीज जो यहाँ आ रहे हैं उनको सहूलियत हो, जैसे कई देशों में अभी देखते हैं आप कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहां कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, है ना, ईरान और इराक और अफगानिस्तान, ये तीन कंट्री ऐसी हैं यहाँ के लिए हमने हमेशा ही अपना दरवाजा खोल के रखा है। और जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करें 2014 के बाद से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक सर्जरी हुई है, जो मेजर सर्जरी हुई है, जो मतलब करिश्माई सर्जरी बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा इराक और ईरान और अफगानिस्तान के लोगों की हुई है। किसी मैंने देखा था, ये दिल्ली में महसूस भी किया है कि कोई वहां पर जब जंग हुई, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, जब वो लोग आए और उनको हमने वो सब चीजें दी है, नए ऑर्गन डेवलप करके उनको दिए हैं, तो वो काबिले तारीफ है, और वैसी सर्जरियां शायद कभी हुई भी नहीं थी वर्ल्ड में, तो हमारे पास वो क्षमताएं हैं।
और अभी अगर हम इस बार के बजट की ही बात करें परीक्षित जी, तो भारत सरकार ने भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से या भारत में जो चिकित्सा का पूरा इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इसमें सबसे बड़ी घोषणा तो ये थी कि भारत में 5 बड़े रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे जिसमें कि रिहैबिलिटेशन से लेकर रिसर्च और इलाज तक की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे ही बड़े अखिल भारतीय आयुर्वेद केंद्र की भी शुरुआत करने की घोषणा है। और साथ ही सरकार ने जो अलग दूसरे देशों से आने वाले नागरिक हैं उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने की जो घोषणाएं की हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं और जो भी तमाम प्रयास हैं, उनसे कैसे आने वाले समय में और भी ये मेडिकल टूरिज्म का एक पूरा ढांचा है और मजबूत हो रहा है।
बाहर से जो पेशेंट आ रहा है वो इंडिया आ रहा है, तो उसको हमें एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि उसके लिए सुरक्षित, गुणवत्ता वाला, आसान भरा और सस्ता, ये एक मैसेज देने की सरकार कोशिश की और सरकार सक्सेस भी रही, सफल भी हुई है इसमें। जो बजट में जिस तरीके की उन्होंने घोषणाएं की हैं, इससे बहुत फायदा भी मिला है। इनका डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 40% इंक्रीज हुआ है इनका चिकित्सा पर्यटन का जो डेटा है, और मतलब 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है बाहर से आने वाले मरीजों के संख्या में। तो जब सहूलियत होती है तो हर बंदा उसको अप्रोच को स्वीकार करता है। सरकार भी उसी दिशा में जा रही है और बहुत अच्छी दिशा है ये। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इसके परिणाम बहुत जल्दी, मतलब 2030 तो मैं बहुत ज्यादा आगे बता रहा हूँ, ये 2027-28 तक ही आप देखिएगा कि हमारा जो डाटा होगा, हमारे पास जो पेशेंट की संख्या होगी, हमारे पास जो सुविधाएं होंगी, उनमें बहुत तेजी से बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने एक और अच्छा काम किया है कि अलग अलग कंट्री में अपने सेंटर भी खोले हैं, चाहे वो सरकार के जरिए हो या प्राइवेट हॉस्पिटल खुद डायरेक्ट वहां सेंटर खोल रहे हैं। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है कि हम आपके घर पहुंच गए, वहां वो अप्रोच कर रहे हैं, वहां वो बता रहे हैं देखिए आप भारत आइए तो ये तरीके का आपको इलाज मिलेगा, इतना सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में अमेरिका या बाकी कंट्री का तुलना करेंगे तो भारत में इलाज वाकई सस्ता है। डॉलर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो भारत का इलाज बहुत सस्ता है। आज भी भारत में 3-4 लाख रुपए में हार्ट की सर्जरी हो रही है, जो कि अमेरिका में उसी हार्ट की सर्जरी का, मुझे अच्छे से याद है कि इसके लिए 12-15 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो उस हिसाब से उन पेशेंट के लिए भारत सबसे सस्ता और किफायती है।
और इसका एक आर्थिक पक्ष भी अगर हम परीक्षित जी देखें, तो जब एक पर्यटक आता है तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ऐसे ही अगर मेडिकल टूरिज्म भारत में बढ़ता है तो उससे निश्चित तौर पर भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी। और पर्यटन मंत्रालय का आंकड़ा भी है 2024 का कि मेडिकल टूरिज्म की भारत में जो जीडीपी में योगदान है वो 5% से ज्यादा रहा है। तो कैसे आगे आने वाले समय में आर्थिक तौर पर भी भारत का बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म फायदा पहुंचाएगा?
देखिए, इस आंकड़े को अगर सजीव तरीके से देखना है तो खास तौर पे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे मैं आपको गुड़गांव का बता सकता हूँ, दिल्ली का बता सकता हूँ कि गुड़गांव में अगर मेदांता अस्पताल है तो उसके आसपास जब भी आप जाएंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे तो आपको पता चलेगा कई तरीके के पीजी, कई तरीके के जो है रूम रेंट पे दिए जा रहे हैं, किराए पे दिए जा रहे हैं, कई तरीके के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं और वहां पे इंटरनेशनल पेशेंट रहते हैं, बकायदा सेफली है, सुरक्षा महसूस करते हैं। प्लस वहां जो आसपास के जो दुकानदार हैं उनका खाना पीना, वो सारी चीजें जो वो लोग आते जाते हैं, ऑटो वगैरह, तो मतलब कुल मिला के अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो जीडीपी को बहुत तेजी से फायदा।
इसीलिए सरकार ने हील इन इंडिया नाम से भी पूरा मिशन चलाया हुआ है कि भारत ग्लोबल हीलिंग हब बने, यानी लोग यहाँ आकर न सिर्फ अपना इलाज करवाएं बल्कि अपने शरीर को तरोताजा करके मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ करके लौटें।
बिल्कुल।
तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमने इस चर्चा में बात की भारत के बढ़ते मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की, तो हमें अपेक्षा है कि आने वाले समय में जिस गति से हम सरकारी योजनाओं और सरकार के समर्थन से भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं उसमें और आगे आने वाले समय में एक बहुत सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। और अभी जैसा कि हमने कार्यक्रम में चर्चा भी की कि भारत 10वें पायदान पर आता है मेडिकल टूरिज्म में, जो आगे आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म के पायदान में और ऊपर आएगा और भारत इस दिशा में और अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, बहुत सारी जरूरी जानकारियां भी साझा की।
बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। धन्यवाद।
तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हमें अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। मंथन।